अध्याय दो, मेजी पुनः स्थापना, द मेजी रेस्टोरेशन। पृष्ठ संख्या 12। मानव समाज के लिपिबद्ध इतिहास के स्मृति चिन्हों में अनेक परिवर्तनों की सराहना की गई है। इनमें से कुछ परिवर्तनों में पूर्ववर्ती राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संगठन एवं व्यवहार के दूरगामी परिवर्तन सन्निहित थे। निसंदेह ऐसे विशाल एवं क्षणिक परिवर्तनों में से एक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान में घटित हुआ। यह मानव जाति के आधुनिक इतिहास में एक अद्वितीय परिवर्तन था, जिसने जापानी समाज को नया लक्ष्य देकर द्रुत संरूपण प्रदान किया। 3 जनवरी 1868 को क्योटो में शाही महल को नियंत्रण में लेने के बाद सत्सुमा तथा चोसू के नेतृत्व में शासन विरोधी शक्तियों ने तोकुगावा शोगुनेट से सम्राट के पक्ष में राजनीतिक सामर्थ्य के औपचारिक प्रत्यावर्तन की घोषणा की। इस घटना ने, जिसे मेजी पुनः स्थापना के नाम से जाना जाता है, कलह एवं षड्यंत्रों से परिपूर्ण सामंतवादी सरकार को नष्ट करके जापान को एक एकीकृत आधुनिक राज्य बनाया। इस काल के लिए मेजी युग के नाम का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया था कि युवक महाराज मुत्सुहितो एक प्रबुद्ध शासन का सूत्रपात करेंगे। पुनः स्थापन शब्द का प्रयोग 8 शताब्दियों के नागरिक मामलों पर सैनिक नियंत्रण के बाद प्राचीन सरकारी संस्थाओं तथा शाही शासन के लौटने की ओर संकेत के रूप में किया गया था। कुछ विद्वानों ने मेजी पुनः स्थापना को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना के रूप में देखा है। उनके अनुसार इस घटना का यह पक्ष इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेजी नेताओं ने एक राष्ट्रीय केंद्र सरकार स्थापित की तथा जापान को पाश्चात्य विज्ञान तथा तकनीक में शक्तिवर्धक वातावरण की ओर अग्रसर किया। उदाहरणार्थ, E.H. नॉर्मन अनुभव करते हैं कि चोटी से नीचे तक ढांचा पुराने अवशेषों पर बना था। द न्यू स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड फ्रॉम द टॉप डाउनवर्ड्स अपॉन द रुइंस ऑफ द ओल्ड। ह्यूज बर्टन ने भी मेजी नेताओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नियोज को द प्लानर्स ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी के रूप में देखा। मार्क्सवाद से जुड़े हुए रोनोहा मजदूर किसान समूह ने इस पुनः स्थापित व्यवस्था को मूल रूप में एक ऐसी बुर्जुआ क्रांति के रूप में देखा, जिसने सामंतवाद का अंत किया तथा पूंजीवादी विकास को आधार प्रदान किया। मार्क्सवादियों के एक अन्य गुट ने इस पुनः स्थापना को क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक भिन्न प्रकार के निरंकुश शासन के बीजारोपण के लिए जिम्मेदार भी माना है। टीडी नगाय के मतानुसार मेजी युग एक संक्रमण काल था, और इस प्रकार मेजी पुनः स्थापन ने भूतकाल से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं किया। गोंडो इक्की नामक जापान के एक प्रभावी विचारक ने मेजी पुनः स्थापन को प्राचीन तथा नवीन दोनों तत्वों के पात्रपादन के रूप में देखा। तथापि मेजी पुनः स्थापन को कुछ विद्वान केवल एक ऐसी महल क्रांति मानते हैं, जिसमें शासन तंत्र के एक गुट का स्थान दूसरे गुट ने ले लिया था। मेजी पुनः स्थापन एक ऐसे अपरिवर्तनीय प्रदूषण का परिणाम था, जिसने उस सामंती व्यवस्था को नकार दिया था, जिसकी रूपरेखा तोकुगावा द्वारा बनाई गई थी। तोकुगावा सामंतवादी समाज ने अपने वंशानुगत ढांचे को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। लेकिन कोई भी समाज हमेशा के लिए निष्क्रिय नहीं रह सकता। उनके द्वारा लागू की गई अनेक नीतियों ने सामंतवादी अर्थव्यवस्था में एक भारी आर्थिक संकट पैदा कर दिया। विद्यमान सामंती व्यवस्था तथा उसकी नीतियों के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया सामंत विरोधी होने के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकती थी। सामंतवादी व्यवस्था का विनाश तथा एक नई केंद्रीय सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण एक ऐसा पासा था जिसे नए नेता खेल रहे थे। वास्तव में पुनः स्थापन के नेताओं ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि यह स्वभावतः सामंत विरोधी एंटी फ्यूडल इन नेचर ही हो। वास्तव में वाकूफू के अंत के बाद जापान एक आधुनिक औद्योगिक समाज बनने का कार्य सफलतापूर्वक कर पाया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई सरकार को अधिकांशतः दो वर्गों पर आश्रित रहना पड़ा। क, व्यापारिक पूंजीवादी वर्ग तथा उसके छोटे समुदायों द्वारा प्रदत्त नेतृत्व। ख, पूर्व अधिकारवादी वर्ग जिसकी महत्वाकांक्षाएं तथा भावनाएं तोकुगावा के वर्गीय अंतरिक्ष की सरकारी सीमाओं में दबाई और कुंठित की जा चुकी थी। अपना आधुनिकीकरण करने में जापान संघर्ष एवं विस्थापन के बिना ही समर्थ था। यह एक केंद्रित अधिकार युक्त सरकार के दृढ़ राष्ट्र राज्य के रूप में सामने आया। व्यापार एवं उद्योग के तीव्र विकास ने एक अस्थायी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। प्रधानतः रेल तथा तार द्वारा संचार एवं परिवहन के आधुनिकीकरण ने जापान को एक ऐसी सुगठित भौगोलिक इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसने उसके लिए विदेशी आक्रमणों एवं घरेलू विद्रोहों से अपनी रक्षा करना सरल बना दिया। तथापि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिकीकरण की इस पूर्ण प्रक्रिया में जापान के अतीत के प्रमुख तत्वों ने विशेष भूमिका निभाई। आधुनिकीकरण की पूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के प्राचीन प्रतीकों एवं सांस्कृतिक गुणों का खुलकर प्रयोग किया गया। उदाहरणार्थ, राजतंत्रात्मक पद्धति इंपीरियल सिस्टम तथा उसके एकीकृत कार्य न केवल संपूर्ण मेजी अवधि के दौरान बल्कि उसके बाद भी एक सुदृढ़ एवं प्रतिबंधक सिद्धांतों के रूप में लागू किए गए। रॉबर्ट बैलला का कहना है कि तोकुगावा तथा उसके पूर्वकालीन धार्मिक विचार जिन्होंने तीव्र गति से जापान का औद्योगिकीकरण संभव बनाया पश्चिम की प्रत्यापत्ति की भावना से मिलते थे। इसी प्रकार शिक्षा में सुधार ने साक्षरता में बहुत वृद्धि की, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली ने सम्राट तथा राज्य के लिए राजभक्ति पर जोर देकर आत्मसमर्पण की भावना को जागृत किया। इस प्रकार जापान में उदारवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद नेशनलिज्म राजनीतिक विकास का आधार बना। शिक्षा प्रणाली का विभिन्न रूढ़िवादी मेजी नेताओं द्वारा पुनः प्रयोग किया गया एवं यह कहना सत्य होगा कि मेजी काल की नई शिक्षा प्रणाली ने द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले के दशक में उग्र राष्ट्रवाद एवं सैन्यवाद को सर्वाधिक पोषित किया। पुनः स्थापन आंदोलन का प्रभावी नियंत्रण। पश्चिमी चार वर्गों तोसा हिजेन चोशु तथा सत्सुमा के समुरायों ने किया। उदाहरणार्थ, सम्राट के सलाहकार जो वास्तविक प्राधिकार का प्रयोग करते थे पश्चिमी क्षेत्रों के भूतपूर्व समुराय थे। वे राज्य के कार्यों का संचालन उसी प्रकार उच्च नाम के अधिकारियों या आडंबरी खिताबधारियों द्वारा करते रहे जैसे वे पहले अपने स्वयं की जागीरों में करते थे। तथापि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि वे वह सब समझते थे जिसे उनके मालिक समझने में असफल रहे थे। वे इस तथ्य से पूर्णतया अवगत थे कि सामंतवाद का कोई भविष्य नहीं था। बाहरी सरदार तोकुगावा को उलटने के इच्छुक रहे होंगे तथा स्वयं सामंतवादी जापान के शासक बनने की इच्छा से प्रेरित भी रहे होंगे। तथापि दैम्यो उन सामाजिक शक्तियों को रोक नहीं सके जो इस समय काबू से बाहर हो जाने दी गई थी। निम्न समुराय तथा कुगे जिन्होंने राज्य के कार्यों पर नियंत्रण कर लिया था ने उन सामाजिक शक्तियों को बल दिया जिन्होंने सामंतशाही मालिकों को किसी दूसरे रूप में अपना शासन दोबारा स्थापित करने से रोक दिया था। यदि फुकोकु क्योहेई नारे के अंतर्गत एक संपन्न देश एवं सशक्त सेना चाहिए थी तो पुरानी पद्धति के स्थान पर राज्य संगठन की एक नई पद्धति लानी आवश्यक। प्रारंभ से ही नई सरकार ने पुराने सरकारी विचारों का उन्मूलन करने का संकल्प ले रखा था। मेजी सुधार के बाह्य रूप से किसी को भी धोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे उसके आंतरिक असली विषय तत्वों पर निगाह डालनी चाहिए। उदाहरणार्थ, जब 646 ईस्वी के ताइका सुधारों, जो थांग काल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पूर्व सामंत संहिता के रूप में जाने जाते हैं, को नमूना मानकर नया संविधान बनाने का प्रयत्न किया गया, वह भी राज्य द्वारा सामंत विरोधी दर्शन की तलाश थी। मेजी पुनः स्थापन मौलिक दस्तावेज अमीरों, दायमियों तथा अधिकारियों को 19 मार्च 1868 की 5 अनुच्छेदों की शाही अधिकार पत्र शपथ समस्त जापान के जनसमूह की सामंतवादी विरोधी भावनाओं के रूप में एक परिचित अभिव्यक्ति थी। इसने घोषित किया कि पहला, विचार सभाएं व्यापक रूप से स्थापित की जाएंगी तथा समस्त मामले लोकमत से तय किए जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण राष्ट्र, जिसमें उच्च तथा निम्न समस्त वर्ग सम्मिलित हैं, राज्य के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में एक होंगे एवं सहयोग करेंगे। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे लोगों की उदासीनता देश को प्रभावित न कर सके। चौथा, पुराने पैशाचिक रीति रिवाज बहिष्कृत कर दिए जाएंगे तथा न्याय धरती एवं स्वर्ग के नियमों पर आधारित होगा, यानी उचित न्याय संगत होगा। पांचवा, शाही शासन के आधार स्तंभों को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के लिए समस्त विश्व में बुद्धि और ज्ञान का अन्वेषण किया जाएगा। इन समस्त अनुच्छेदों, प्रधानतः प्रथम अनुच्छेद ने लोगों के बीच सर्वोच्च श्रेणी की महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया, क्योंकि वे सामंतीय संघर्ष, दलीय लड़ाइयों एवं रूढ़िवाद से काफी थक चुके थे। इस अधिकार पत्र ने यूरी की मासा के प्रगतिवाद, तोसा विचारधारा के उदारवाद और कीदो ताकायोशी के प्रतिकूल सामंतवाद को सजीव बना दिया। इस अधिकार पत्र के बाद शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत पर आधारित एक नए सरकारी तंत्र की उद्घोषणा की गई। शक्ति का केंद्रीयकरण, यद्यपि अधिकार पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं था, यह नई सरकार की मूल नीति का अभिन्न अंग था। जापान में उस समय विभिन्न सामंतवादी शक्तियों का अंत करने के लिए भेजी गई सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए, यद्यपि सामंत अपना क्षेत्रीय नियंत्रण त्यागने में संकोच कर रहे थे। सामंती पृथकतावाद एवं विशेषाधिकारों के अत्यधिक प्रमुख समर्थक भी अनुभव कर चुके थे कि केंद्रीय सरकार से मुक्त स्थानीय शक्ति पर मजबूत पकड़ रखना असंभव था।